नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए पत्र लिखा। सीबीआई की आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य से दुष्कर्म और हत्या मामले में पूछताछ जारी। कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के आसपास गैर कानूनी रूप से लोगों के एकत्रित होने को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 188 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किये। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए कुवैत पहुंचे और अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आज इजराइल जा रहे हैं। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में प्रधानमंत्री मोदी से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लाने की मांग की है। आईएमए ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था हवाई अड्डे जैसी चाक चौबंद होनी चाहिए। श्री मोदी को लिखे पत्र में आईएमए ने कहा कि अस्पताल में दुष्कर्म मामले की जांच निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कोलकाता के आरजीकर चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य से दुष्कर्म और हत्या मामले में नई दिल्ली में पूछताछ कर रहा है। ब्यूरो ने पूर्व प्राचार्य को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए बुलाया और कल भी पूछताछ की गई। इस बीच कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास किसी प्रकार की गैर कानूनी रूप से लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए आज से 7 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है। कोलकाता पुलिस ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के दो नेताओं को 14 अगस्त की रात को मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने के प्रयोजन से केंद्र सरकार एक समिति गठित करेगी। सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स संघ के संगठन, भारतीय चिकित्सा संघ और स्वास्थ्य संबंधी अन्य पक्षों की चिंता के बाद ये निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
और सालों से इस शरणार्थियों की मांग थी, 19 में मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा।
केंद्र ने इस विषय पर राज्यों से भी समिति को सुझाव देने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के मामले में 6 के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएं। सरकार ने ये भी कहा है कि निर्धारित समय सीमा में प्राथमिकी दर्ज कराने का दायित्व संस्थान प्रमुख का होगा। केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद देश भर में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जारी की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, 6 बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है, 5 तक हर 6 में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए से किसी भी धर्म के व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं होती है, बल्कि इससे भारतीय शरणार्थियों को नागरिकता के साथ साथ सम्मान और न्याय मिलता है। श्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 188 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।
और सालों से इस शरणार्थियों की मांग थी। 19 में मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला लिया, कानून पारित हुआ, आंदोलन हुए, 24 के चुनाव के पहले हमने रूल्स बनाकर अधिकार दे दिया और आज सर्टिफिकेट भी दे दिया आप लोगों को। आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आप जियोगे, इसका मैं विश्वास करता हूं।
श्री अमित शाह ने देशभर में CAA लागू करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
CAA देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्य जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टिकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं, उनको न्याय नहीं। उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई। लाखों करोड़ों लोग तीन पीढ़ियां हो गई न्याय के लिए तरसते रहे मगर एक इंडी अलायंस की तुष्टिकरण की नीति ने इस शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया।
इससे पहले गृह मंत्री ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह शाम को साबरमती में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। श्री करा ने श्रीनगर में किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी पार्टी के लिए सीटें जीतना है। श्री करा ने कहा कि स्थानीय नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने कोचिंग संस्थान श्रीराम्स IAS पर UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में फर्जी और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लिया गया है। इससे वस्तु या सेवा में फर्जी या भ्रामक विज्ञापन को रोकने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में CCPA की प्रमुख मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने श्रीराम्स IAS के भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। श्रीराम IAS ने विज्ञापन में दावा किया था कि संस्थान के 200 से अधिक प्रत्याशियों का चयन हुआ है जबकि ये संख्या 171 थी। तिरुपति स्थित तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम प्रशासनिक भवन के इंजीनियरिंग प्रभाग में कल आग लग गई। वहां के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस दुर्घटना में मंदिर और सड़क कार्यों से संबंधित कई फाइलें क्षतिग्रस्त हुई हैं लेकिन ई ऑफिस में जानकारी सुरक्षित रहने के कारण उन फाइलों के आंकड़े नष्ट नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना का कल पुणे में शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को बड़े भाई की ओर से दिए जाने वाले उपहार के रूप में राज्य सरकार प्रति माह 1500 रूपये देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर एक दिन की यात्रा पर आज कुवैत पहुंच गए हैं। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर एक दिन की यात्रा पर आज कुवैत पहुंचे। यहां वे भारत कुवैत द्विपक्षीय संबंधों के विषय में चर्चा करेंगे। एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात की। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और कौंसुलर मामलों के साथ साथ लोगों के आपसी संबंधों सहित अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। श्री शंकर की बैठकों के दौरान गजा की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। कुवैत ने हाल ही में गजा में युद्ध विराम की पहल का समर्थन किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोर्न ने पेतोंग तान चिनावात्रा को देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के महासचिव अरफात सुकानन ने आज सुबह एक कार्यक्रम में चिनावात्रा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा की। उन्हें इस महीने की 16 तारीख को संसद में बहुमत मिला था। थाईलैंड के राजा की पुष्टि के बाद 37 वर्षीय पेतोंग तान चिनावात्रा देश की सबसे युवा और दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। वे श्रेथा थाविसिन के स्थान पर प्रधानमंत्री बनी हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के पद पर नियुक्त करने से जुड़े मामले में संवैधानिक न्यायालय ने श्रेथा थाविसिन को इस महीने की 14 तारीख को पद से हटा दिया था। सुश्री पेतोंग तान प्रधानमंत्री बनने वाली चिनावात्रा परिवार की चौथी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेतोंग तान चिनावात्रा को थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में उनके सफल कार्यकाल की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए उत्सुक हैं। नेपाल की विदेश मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगी। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि डॉ देउबा की ये यात्रा भारत और नेपाल के बीच परंपरागत नियमित उच्च स्तरीय विचार विमर्श का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में नेपाल प्राथमिक भागीदार है। ये यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा और इस पर विचार विमर्श का अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा इससे संबंधों को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों को तेज करने के लिए आज इसराइल में तेल अवीव जाएंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद श्री ब्लिंकन की पश्चिम एशिया की यह 9वीं यात्रा है। वे काहिरा में होने वाली इसराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष शांति वार्ता पर नजर रखेंगे। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दोहा में हुई शांति वार्ता के संघर्ष विराम की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सूत्रों ने बताया कि अमरीकी विदेश मंत्री मसाक के निदेशक डेविड बार्निया और शिनबेट के प्रमुख से भी मिलेंगे। ये लोग दोहा में हुई शांति वार्ता में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। गाजा पट्टी में इसराइल हमास के बीच युद्ध विराम पर वार्ता बुधवार से काहिरा में फिर होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को निर्धारित इस वार्ता में 3 मध्यस्थ मिस्र, कतर और अमेरिका तथा इसराइल के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि मिस्र, अमेरिका और इसराइल के प्रधानमंत्री फिलहाल दोहा में हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने चेतावनी दी है कि कल यूक्रेन में हुए ड्रोन हमले के बाद से ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा स्थिति चिंताजनक है। ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने ऊर्जा संयंत्र के निकट हुए हमले के तुरंत बाद का घटनास्थल का दौरा किया। एजेंसी का कहना है कि संयंत्र से कुछ दूरी पर बार बार विस्फोटकों, मशीन गनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। चीन के हुनान प्रांत की वेक्सटिन काउंटी में एक कोयला खदान दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हैं। आपदा प्रबंधन विभाग बचाव अभियान चला रहा है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। मौसम विभाग ने केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों में कल तक बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस सप्ताह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज जानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए पत्र लिखा। सीबीआई की आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य से दुष्कर्म और हत्या मामले में पूछताछ जारी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 188 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए कुवैत पहुंचे और अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा में युद्ध विराम प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आज इसराइल जा रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।